مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی۔ ہمارے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور اسٹوڈیو انجینئر ہیں پیٹ ہنڈلے۔ دوستو، حج اسلام کا اہم رکن ہے جس کی تمام مسلمان خواہش رکھتے ہیں اور زندگی میں کم از کم ایک بار حجاز مقدس کا رخ کر کے یہ فریضہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سال کا حج چند دن پہلے مکمل ہوا ہے اور بیشتر حجاج کرام یا شاید تمام حجاج کرام ابھی سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں نئے حاجیوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا تجربہ کیسا رہا، حج کے انتظامات کیسے تھے اور انہیں کس قدر سکون ملا، کیا ہم سے وہ باتیں شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ہم گفتگو کریں گے کئی لوگوں سے، لیکن ابھی سعودی عرب میں غالباً نماز کا وقت ہے تو ہم نے سوچا کہ پہلے ایک صحافی سے بات کرتے ہیں۔ شاہد نعیم صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں، جدہ میں ہوتے ہیں، تو ان سے حج آپریشن کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ شاہد صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ہمیں بتائیں گے اس سال کتنے افراد نے حج ادا کیا، سعودی حکومت نے کیا انتظامات کیے تھے، کیا بتایا اس بارے میں؟
جی امید مبشر صاحب، اس دفعہ تقریباً 25 لاکھ سے زائد حجاج یہاں پہنچے تھے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق
جی،
اور جن میں پاکستان سے 2 لاکھ آدمی تھے جنہوں نے مناسب حج ادا کیا۔ ان کے انتظامات جو ہیں سعودی پاکستانی انتظامات جو ہیں وہ بہتر رہے گزشتہ کئی حج کے مقابلے میں
جی،
لیکن یہاں جہاں شکایتیں ہوتی رہیں اس میں وزیر حج خود موجود یہاں موجود تھے، اس کے علاوہ مشیر خاص جو وزیر اعظم کے ہیں ارباب صاحب وہ موجود تھے۔ تو یہ وقت پہ جو ہے شکایتوں کو دور کرتے رہے۔ کھانے پینے کی شکایتیں تھیں، بسوں کی کرانے کی شکایتیں تھیں
جی،
لیکن وہ وقتی تھیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔
اچھا، تو لیکن ہم سعودی حکومت کے انتظامات کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے جو ہر سال سعودی حکومت کرتی ہے، تو اس میں کتنا ان کا عملہ لگتا ہے اور کیسے ارینجمنٹ کی؟ یہ تو سارے سال ہی انتظامات جاری رہتے ہوں گے۔ غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے شاہد نعیم صاحب سے۔ ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دفعہ حج آپریشن کیسا رہا۔ انہوں نے پاکستان کے بارے میں بتایا کہ پاکستان کے انتظامات سے کچھ لوگوں کو، چند لوگوں کو شکایات ہوئی تھیں، لیکن اوور آل بہتر انتظامات تھے۔ پاکستان کی طرف سے اس سال پہلی بار 2 لاکھ افراد نے فریضہ حج ادا کیا، کل تعداد انہوں نے بتائی کہ 25 لاکھ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کا حج کوٹا 1,80,000 تھا۔ یہ کوٹا غالباً ہر ملک کی مسلمان آبادی کے 1% کو دیا جاتا ہے، ہر ملک کو دیا جاتا ہے کہ اس کے 1% لوگ حج کے لیے آ سکتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی سے پہلے 18 کروڑ تصور کی جاتی تھی، چنانچہ 1,80,000 افراد کو حج کا موقع دیا جاتا تھا، لیکن چونکہ پاکستان کی آبادی 20 کروڑ سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو پاکستان کا حج کوٹا بڑھا کر 2 لاکھ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پہلا سال تھا جس میں 2 لاکھ پاکستانیوں نے فریضہ حج ادا کیا، اور ظاہر ہے جس طرح تعداد حاجیوں کی بڑھتی جاتی ہے ان کے انتظامات کرنا زیادہ دشوار ہوتا جاتا ہے، لیکن سعودی حکومت اور پاکستانی حکومت اپنی ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ حاجیوں کو بہتر سہولتیں فراہم کرے۔ شاہد بھائی، آپ بتا رہے تھے کہ اس دفعہ 25 لاکھ حاجیوں نے حج ادا کیا۔ ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ سعودی حکومت تو پورا سال ہی حج آپریشن کو بہتر بنانے کے لیے کاوشیں کرتی ہوگی، تو سعودی حکومت کی طرف سے ہمیں بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کتنا ان کا عملہ ہوتا ہے اور اتنے بڑی تعداد میں حاجیوں کو کیسے سنبھالتا ہے؟
دیکھیے، ایک تو یہ ان کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع، یعنی ابھی حج ختم ہوا ہے، اس کے فوراً بعد ہی یہ شروع کر دیتے ہیں۔ جو جہاں جہاں خانیاں ہوتی ہیں ان کے مطابق جس ڈپارٹمنٹ، مطلب وزارت صحت میں، صحت کے علاوہ منسٹری آف انٹیریئر۔
غالباً پھر ہماری لائن منقطع ہو گئی، یہ ایک مسئلے کا سامنا ہو رہا ہے کہ لائن ڈسٹرب ہے، اور ان سے بات مسلسل ہو نہیں پا رہی۔ وہ حج کے انتظامات کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے۔ چند دن پہلے وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری نے ایک مضمون لکھا ایک ویب سائٹ کے لیے، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ پہلا سال ہے کہ جب پاکستان کی طرف سے 2 لاکھ آزمین حجاز مقدس گئے اور حج کا فریضہ ادا کیا۔ ایک چیز جو نئی اور اس دفعہ ہوئی کہ روڈ ٹو مکہ پروگرام شروع کیا گیا. یہ پروگرام ویسے ہی ہے جیسا بعض ملکوں کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں یا کسی اور ملک میں امیگریشن کرتے ہیں اور انہیں امریکہ کی امیگریشن نہیں کروانی پڑتی. تو اسی طرح روڈ ٹو مکہ پروگرام ہے جس کے تحت اس سال 22,000 عازمین کی اسلام آباد میں امیگریشن ہو گئی تھی. انہیں مکہ یا مدینہ یا جدہ ایئرپورٹ پر آ کر وہ پاسپورٹ کنٹرول کی لائن میں نہیں کھڑا ہونا پڑا, امیگریشن انہیں نہیں کرانی پڑی. تو یہ پہلا موقع تھا, شاید اس میں بعد میں اضافہ کر دیا جائے, لیکن اس سال 22,000 حاجیوں کو اس سے فائدہ ہوا. حج پیکیج میں اس سال اضافہ کیا گیا تھا, لیکن اس کے بارے میں ڈاکٹر نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ پاکستانی روپے کی قدر میں کمی اس کا سبب تھی. پاکستانی کرنسی, پاکستانی روپیہ ڈالر اور ریال اور دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں گرا ہے, تو حج پیکیج میں اضافے کا سبب یہ تھا. لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حاجیوں کو ان کی رہائش گاہوں کی وجہ سے کچھ پیسے واپس بھی کیے گئے ہیں. جن کی رہائش گاہیں دور تھیں حرمین سے, تو ان کو کچھ پیسے, ان کا کہنا ہے کہ 20,000 سے 60,000 روپے تک واپس بھی کیے گئے ہیں. کیا شاہد صاحب آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ نوازش صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. نوازش رضا صاحب ٹور آپریٹر ہیں, حج کے قافلے لے کے جاتے ہیں, لوگوں کو حج کا فریضہ انجام دینے میں مدد کرتے ہیں. بہت شکریہ نوازش صاحب, ہمیں بتائیں گے کہ اس سال کا حج کیسا رہا, آپ کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے گئے اور کیا کیسے انتظامات تھے سعودی حکومت کی جانب سے؟
جی السلام علیکم. میرے ساتھ 182 افراد تھے ٹوٹل.
جی
بحیثیت سے مجموعی تو انتظامات گزشتہ سالوں کی نسبت زیادہ بہتر تھے.
جی
اگر ہم اوور آل جائزہ لیں تو انتظامی لحاظ سے یہ حج ان کا بہترین حج تھا.
اچھا, اور آپ کو جیسے رہائش گاہیں, ظاہر ہے آپ تو پرائیویٹ لے کے جاتے ہیں, گروپ پرائیویٹ گروپ ہے آپ کا, تو انتظامات ظاہر ہے آپ خود بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے, لیکن اس میں کچھ حکومت کی طرف سے ہی مدد ملتی ہے آپ کو, یعنی پاکستانی حکومت کی طرف سے؟
جی جی ملتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, لیکن اس میں تقریباً 90% انتظامات تو پرائیویٹ ٹور آپریٹر خود ہی کرتا ہے. رہائش گاہ سے لے کر اس کی ٹرانسپورٹ سے لے کے کھانا پینا, یہ سارے انتظامات براہ راست خود کرتا ہے ٹور آپریٹر.
ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ وزیر مذہبی امور ہیں, انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے غالباً 400 ٹور آپریٹرز جو تھے گروپ سے, ان کا انہوں نے سرپرائز وزٹ کیا. تو کیا انہوں نے آپ کے بھی گروپ کا وزٹ کیا, یا کچھ آپ جانتے ہیں کہ وہ متحرک تھے اس دفعہ انتظامات بہتر کرنے میں؟
میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ متحرک تھے یا نہیں تھے, تو ٹور آپریٹر انہوں نے کیا ہوا, ہمارا تو نہیں کیا.
جی
بارہ ان کی مانیٹرنگ ٹیمیں اپنی, انہوں نے ایک مانیٹرنگ سسٹم بنایا ہوا گورنمنٹ آف پاکستان نے جو تمام پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کو مانیٹر کرتی ہے کہ وہ جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں جس کا اس نے وعدہ کیا ہے, آیا وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹر اس کو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا.
جی
یہ سسٹم ہے جو ہمیشہ چلتا رہا ہے, اور اب بھی اس دفعہ وہ متحرک تھا وہ سسٹم.
ٹھیک ہے, یہ تو اچھی بات ہے. اچھا ایک بات اور یہ کہ ایک انہوں نے روڈ ٹو مکہ پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحت اس بار اسلام آباد میں 22,000 عازمین کی وہاں پہ امیگریشن ہوئی, یعنی انہیں مدینہ یا جدہ آ کے نہیں کرانی پڑی. تو کچھ آپ کے علم ہے کہ کیا کراچی میں بھی یہ سلسلہ شروع کرنے والے ہیں اگلے سال یا مستقبل قریب میں؟
میرے خیال میں کراچی میں تو ظاہر ہے ایک مشکل مرحلہ ہوگا امیگریشن کے لیے, ایک ایسی جگہ چاہیے کہ جہاں سے سعودی گورنمنٹ یہاں سے امیگریشن جب کر لے تو وہ جو فرد ہے یا وہ حاجی ہے, اب وہ تو ظاہر تو اسی جب امیگریشن ہوگی تو وہ تو سعودی عرب میں داخل ہو چکا ہے.
جی لائن ڈراپ ہو گئی نوازش رضا صاحب کی, ان سے ہم معلوم کرتے ہیں ایک ٹور آپریٹر کا پرسپیکٹیو کیا ہے حج کے حوالے سے, وہ انتظامات کے بارے میں بتا رہے تھے. وہ پرائیویٹ حج ٹور آپریٹر ہیں, اس دفعہ انہوں نے بتایا کہ 182 لوگوں کو ساتھ لے کے گئے. یہ ہر ٹور آپریٹر کا, پرائیویٹ ٹور آپریٹر کا ایک کوٹا ہوتا ہے جو حکومت مقرر کرتی ہے. اس سال یہ کوٹا انہیں 77,000 لوگ تھے جو پرائیویٹ اسکیم کے تحت انہوں نے حج کیا ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا رہا کہ 180,000 اگر 160,000 اگر لوگ ہیں تو 80,000 پرائیویٹ اور سرکاری حج اسکیم کے تحت لوگ جاتے تھے. اس بار 123,000 افراد سرکاری حج اسکیم کے تحت حجاز مقدس گئے اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے تحت 77,000 گئے. جی نوازش صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے اس بارے میں.
وہ اپنا جو میں بتا رہا تھا مانیٹرنگ سسٹم کو ہر سال کی طرح اس طرح بھی رکھتے ہیں, اور وہ انہوں نے اس دفعہ بھی اسی طرح مانیٹرنگ کرتے رہے.
ٹھیک ہے. اچھا ایک بات, یہ کئی بار ہو چکا ہے ماضی میں بھگدڑ مچ جاتی ہے جس وقت رمی جمرات کے لیے لوگ جاتے ہیں, اور یہ چند سال پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا. تو اب وہ اس کے لیے کچھ بہتر انتظامات کیے گئے ہیں کہ بھگدڑ نہ مچے, آنے جانے کے راستے ٹھیک ہوں اور کوئی وی آئی پی موومنٹ نہ ہو؟
ہاں, میں آپ کے طور سے بات کہنا چاہوں گا کہ جو جو حالات گزرتے جا رہے ہیں, گورنمنٹ آف سعودیہ کے انتظامات میں کافی بہتری آ گئی ہے. بلکہ میں اس سال کہوں گا کہ اوور آل اگر آپ ایک تجزیہ کریں تو جو انہوں نے انتظامات کیے تھے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پولیس اہلکار تھے, ان کا اخلاق بھی بات نسبتا لوگوں کو شکایت ہوتی ہے گزشتہ سالوں میں
جی,
اس کی کہیں زیادہ لوگ اب اخلاق سے پیش آتے تھے
جی.
اسی طرح آپ کہیں انہوں نے اپنے بس سسٹم کو, ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہت بہتر کیا ہے.
گڈ.
اسی طرح سعودی گورنمنٹ نے اپنی خود ایک مانیٹرنگ اپنی جو بلڈنگز اور ہوٹل والوں پہ رکھی ہے وہ کہیں بہتر رکھی ہے. یعنی اگر اب رش تو بڑا تھا, یعنی آپ کہیں گے کہ پبلک بہت تھی, لیکن آپ مینا, عرفات, مغلفہ جہاں پہ یہ ہوتے, سسٹم بہت زبردست ہے. اگر ہم گزشتہ سالوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ رش کم ہوتا تھا اور ہم عرفات سے نکلتے تھے تو کئی کئی گھنٹے, بلکہ 12-12 گھنٹے لگ جاتے تھے مغلفہ پہنچنے میں.
اچھا,
اس دفعہ ایسا نہیں تھا, بسیں اپنے وقت میں نکل رہی تھیں, آدھے آدھے گھنٹے, 2 گھنٹے, زیادہ زیادہ 1.5 گھنٹے میں
جی
وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتی تھی. اور مکہ بھی چل رہا تھا, ہر چیز اپنے روانہ تھی. تو یعنی اگر ہم ایک فل تجزیہ کریں نا تو کافی انہوں نے امپروو کیا ہے اور بہت بہتر ہوئے انتظامات.
یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو عرفات سے یا مینا سے اگر ٹرین جو چلتی تھی, اور تو اس دفعہ آپ نے اس سہولت سے کوئی فائدہ اٹھایا یا پاکستانیوں کو کچھ اس سے فائدہ ہوا؟
جی, مبشر, ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین کا ایک روٹ ہے, اس روٹ کے اوپر جس پہ ٹرین کی لائن ہے, اس لائن کے بیچ میں خیمے آ رہے ہوتے ہیں, ان کو تو فائدہ دیتی ہے وہ ٹرین
جی.
لیکن اگر مثال کے طور پہ مینا یا عرفات خود اس کا جو آپ ایک کارنر کے اوپر جہاں سے ٹرین چل رہی ہے وہاں سے کوئی 4 کلومیٹر پیدل چل کر آئے حاجی, اس سے بہتر ہے کہ 4 کلومیٹر جو ہے وہ اس طرف چلا جائے مغلفہ کی طرف
جی.
لہٰذا یہ ٹرین سسٹم ہمارے پر اپلائی نہیں ہوتا, نہ اس کے قریب کے ٹائم پہ.
ٹھیک ہے,
اوور آل جو ٹرین کے اسٹیشن کے قریب ہوتے ہیں ان خیموں کو یہ فیسلٹیز اویل کراتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز ہے جس کا سامنا سبھی لوگوں کو کرنا پڑتا ہے, وہ یہ کہ بہت طویل, بہت لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں ایئرپورٹ پر آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی. تو کچھ اس کے لیے کچھ خاص بندوبست کر رہی ہے گورنمنٹ کے حاجیوں کو سہولت, انہیں 12-12 گھنٹے نہ بیٹھنا پڑے ایئرپورٹ پہ؟
نہیں, میں بلکہ یہ کہوں گا کہ اس دفعہ تو سعودی گورنمنٹ کا ایک بڑا شاندار کام یہ تھا کہ جو ہم ایک ذہن بنا کے گئے تھے کہ 5 گھنٹے رکنا پڑے گا, 6 گھنٹے, کوئی ایسا سلسلہ ہی نہیں تھا. ہم ادھر آئے ہیں اور ہر شخص سے آپ پوچھیں گے تو امیگریشن بہت تیز تھا.
اچھا,
اگر وہ اسلام آباد میں بھی اگر کسی کا امیگریشن ہوا ہو اور نہ ہوا کوئی فرق نہیں تھا. اور اسی طرح فاسٹ ٹریک کے اوپر انہوں نے کام کیا تھا, یعنی آپ ادھر نکلیں اور آپ اپنی بس میں بیٹھیں اور اپنی منزل پہ روانہ ہو جائیں.
اچھا,
بہت زیادہ ٹائم کوئی بھی خرچ نہیں ہو رہا تھا اس
کے. بہت خوب, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ایک چیز اور یہ بتا دیں بس, آخری سوال, ہمارے ساتھ شاہد نعیم صاحب بھی ہیں, جرنلسٹ ہیں, جدہ میں ہوتے ہیں, ان سے بھی بات کریں گے آپ سے. آپ ایک بات اور بتا دیں کہ جب یہ ٹور آپریٹرز ہیں اور سرکاری حج اسکیم کے تحت ہیں, پہلے یہ برابر تھے دونوں کے نمبرز, یعنی دونوں کی تعداد, لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 1,23,000 سرکاری اسکیم کے تحت آئے اور پرائیویٹ 77,000 ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کا کوٹا نہیں بڑھایا گیا؟
مجھے ایک بڑی ڈبیٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر جو اہلکار ہیں, ہر دفعہ ایک جنگ ہوتی ہے اور عدالتوں تک چلی جاتی ہے جنگ, اس سال بھی رہی ہے
جی,
اور ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا آیا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے. اگر وہ مثال کے طور پر اگر ایک پرائیویٹ ٹور آپریٹر غلطی کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں سارے کافر ہیں, وہ سارے کے سارے ایک ہی سطح پہ کھڑی کر دیتی ہے لا کے, اور اس وجہ سے ایک جنگ ہے جو ٹور آپریٹرز اور گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان. اس دفعہ بھی عدالتوں تک پہنچ جاتی ہے, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کا کیس ہر سال ہوتا ہے فیصلوں پہ, اور یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان رقابت اتنی شدید ہے کہ بعض دفعہ تو یہ سب کچھ اس دفعہ کوٹا نہ دینے کی قسم کھائی ہوئی تھی گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ پرائیویٹ کو دینا ہی نہیں ہے. وہ اس طرح شو کر دیا جیسے پرائیویٹ ٹور آپریٹر پتا نہیں کون ہے, اور انہوں نے یہی کیا ہے. بلکہ میری تو جاتا کہ طلاق ہے کہ جو اضافی کوٹا ملا تھا
جی,
وہ کوئی ان سے سوال کرے گورنمنٹ آف پاکستان سے وہ کہاں چلا گیا.
اچھا,
وہ کس جو بکا ہے وہ دیا گیا ہے, یعنی سب سے نااہلی یہ کہ 4-4 دفعہ قرآن اندازی ہوئی ہے
جی
لوگوں کو. آخری وقت میں جو ہمارے پاس بھی سرکار سے فارغ ہو کر آئے تھے उनके उन्होंने प्राइवेट में अप्लाई कर दिया, उनके टिकट विकेट सब हो गए, मालूम चला के दिए हमारा नाम कुरानदाजी में आ गया चलने से 10-12 दिन पहले। ये खुद ये अभी कैसे कर सकता है।
अच्छा तो ये बताएं कि कितना फर्क था,
आवाज ही नहीं बनता है,
कितना फर्क था प्राइवेट हज में और सरकारी स्कीम में, क्या ज्यादा फर्क था?
देखिए फर्क है उसके फैसिलिटीज के हिसाब से
जी,
पर आप जो फैसिलिटीज आप दे रहे हैं उस हिसाब से जिन्होंने दी उन्होंने इनके इक्वल भी हज कराया है। अब एक बंदे खुदा 5-स्टार होटल में रोकता है वो आपको अंदाजा है, वो और एक जो है वो आप अजीजिया में उसको 12 किलोमीटर दूर रोकते हैं और आपका रुपया जो है वो 1 रुपया जो है वो 1 रियाल जो है 42 रुपए के बराबर है
जी।
वो तो फर्क आना ही है मुझे भाई, या तो फैसिलिटीज को तय कर दें या तो अभी क्राइटेरिया बनाए कि जी आप जो है ना वो फैसिलिटीज नहीं देंगे इस मैार पे सब, जैसे तुर्की है, जैसे मिस्र है, जैसे ईरानी है, उन्होंने तो अपना एक एरिया बना रखा है कि इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते तो फिर सही है, लेकिन एक तरफ हाजी को आप फैसिलिटीज देंगे तो वो तो प्राइस बढ़ेंगे। यहाँ पे हज जो है वो 5 लाख से लेकर 7-8-9-10 लाख का भी गया है
जी,
जैसे जैसे आपने फैसिलिटीज अवेल करना शुरू की है,
ठीक है।
लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर जितनी जानमारी करता है वो जिन वसाइल के अंदर जिस तरह वो करता है वो
डिजर्व करता है,
हाजी को
ठीक है। नवाजी साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, बहुत आपने कीमती मालूमात फराहम की, आपसे फिर किसी और मौके पर मजीद इस बारे में तफसील से बात करेंगे। शाहिद नईम साहब हमारे साथ हैं, शाहिद भाई आपसे 2 दफ़ा आपका रابطہ मुनक़ता हो गया।
जी,
अब हमें बताइए, ये नवाजी साहब तो बता रहे थे कि हुकूमत ने अच्छे इंतजाम किए, यानी सऊदी हुकूमत ने, और पाकिस्तानी हुकूमत के बारे में भी एक अमूमी ख्याल यही है, तो आप बताएं पाकिस्तान का हज ऑपरेशन फिर कैसा रहा? अभी तो ज़ाहिर जारी है
जी, पाकिस्तान का हज ऑपरेशन जो है वो बहुत बेहतर रहा है, इसलिए हमारी कई हाजियों से बातचीत हुई है, उन्होंने यही फरमाया है कि वो उनको खाने में और खाने की फराहमी में, बसों की फराहमी में, हर चीज में, और टेंट वगैरह जब इनको खेमे दिए गए थे उसमें इनको आसानियां रही इस साल बहुत ज्यादा। पिछली दफा वो आए थे हज पे, लेकिन इस दफा देखा कि काफी ये एक हमारे यहाँ एक मिजाज बन गया है कि एहतजाज, यानी अगर हमें खाना आने में
एक दफ़ा फिर हमारा रابطہ मुनक़ता हो गया है, और ये कुछ डिस्टर्बेंस हैं, और गालिबा इसकी वजह यह है कि जब 25 लाख हाजी एक वक्त में मौजूद होंगे तो जो लोकल लाइंस भी हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसलिए सऊदी अरब में लोगों से रابطہ करते हुए हमें मुश्किलात का सामना है। शाहिद साहब इस बारे में तफसील से हमें बता रहे थे, जो उनके पास मौजूद थी तफसील के हज के कैसे इंतज़ाम किए गए थे। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी, उन्होंने एक मजमून लिखा और उसमें तफसीलात बताएं कि इस दफ़ा उन्होंने हज के कैसे इंतजाम किए हैं। वो खुद हिजाज़ मुकद्दस में मौजूद हैं, वो उन्होंने खुद भी फरीज़ हज अदा किया है और तमाम मामलों की निगरानी करते हैं। जी शाही साहब,
हेलो हेलो हेलो,
जी जी जी, अब मुझे जी आवाज आ रही है, लाइन डिस्टर्ब हो रही है, ये ताज्जुब की बात है कि हमसे
नहीं सुन पा रहा हूँ आपको, जी आपको नहीं सुन पा रहा हूँ।
अच्छा आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं,
दोबारा लिंक कीजिए।
शाहिद साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मैं वज़ीर मज़हबी अमूर के बारे में बता रहा था कि उन्होंने खुद हज ऑपरेशन की निगरानी की और सरप्राइज़ विज़िट किए। उनका कहना है कि 400 से ज़्यादा ग्रुप्स का उन्होंने दौरा किया, निगरानी की और देखा उन्होंने और उनकी टीम ने कैसे इंतजाम हैं। उनका कहना था कि हज के मौके तक सिर्फ 281 अफराद ऐसे थे जो रास्ता भूल गए या खो गए और उन्हें फिर ढूंढ लिया गया, उनके अमले ने ढूंढा। 591 अफराद के बारे में उन्होंने बताया कि उनका सामान गुम हो गया था, अब ये नहीं मालूम कि उनमें से कितनों का सामान मिल गया, और उन्होंने टोल फ्री नंबर दिया था जिस पर कोई भी शख्स शिकायत कर सकता था। 730 अफराद ने शिकायत की जिसका उन्होंने इजाला किया। 18,500 अफराद ने पाकिस्तानी मेडिकल मिशन का दौरा किया, इनमें से कुछ 100 अफराद थे जिन्हें दाखिल भी किया गया, इन सबका इलाज किया गया। जी शाहिद साहब से जी रابطہ बहाल हुआ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी जी आ रही है बिल्कुल
जी। अब मुझे ये बताएं, हर साल हाजियों की तादाद में इजाफा हो जाता है और काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी जारी है मक्के में और गालिबन मदीने में भी, तो अब कितने अफराद के लिए यहाँ पे ऐसा बंदोबस्त है? क्या मुस्तकबिल में हाजियों की तादाद बढ़ाई जाएगी? ये 25 लाख है, क्या इस फिगर को बढ़ाने का इरादा है सऊदी हुकूमत का?
देखिए ये तो अभी इन्होंने 2 लाख जो है पाकिस्तानियों का कोटा बहाल किया, क्योंकि पहले कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही थी उसकी वजह से काफी ममालिक 20% जो है कोटा कम कर दिया था, अब उनको बहाल कर दिया, तो उसकी वजह से इस साल ये हुआ कि 25 लाख तो एक सरकारी अदाद शुमार आए हैं, लेकिन जो प्राइवेटली आप देखिए और भी लोग इधर उधर से आए हैं तो 27 लाख तो होंगे तकरीबन, लेकिन मुस्तकबिल में जो तौसी होगी उसके अंदाजे से ये बताया जा रहा है 2020 तक जो है वो इसमें और भी 2-3 गुना इजाफा होगा।
अच्छा,
तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से ये इंतजाम भी करने हैं, वो सारी चीजें विजन 2030 में जो है वो सारी चीजें रखी गई हैं, इनके इंतजाम को सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। और जाहिर सी बात है,
अच्छा शाह साहब, ये
जाहिर सी बात है हर मुल्क से तआवुन मांगेंगे, हर ममालिक के साथ जो है
उनके
कोऑर्डिनेशन टीम है वो उसको देखेगी
जी।
तो वजारत हज जो है वो इब्तदाई दिनों से ही काम करना शुरू करती है और आखिर में जाकर के एक माहदे की शक्ल में चीज आती है सामने, इस पे हर मुल्क के सरबरा आकर के उस पर दस्तखत करते हैं, मीटिंग एक खास इजलास होता है, इजलास के बाद उस पर दस्तखत करते हैं,
ठीक
तमाम एक पॉइंट्स लिए हुए होते हैं कि इस पर आप एग्री करते हैं कि नहीं, फिर उस पर बहस होती है।
ठीक,
तो ये ईरान पाकिस्तान इंडोनेशिया हर मुल्क के साथ जो है एक ही जैसा रवैया होता है।
तो शाही साहब, अगर तादाद बढ़ाएंगे हाजियों की तो हर मुल्क का कोटा भी बढ़ेगा, और चलें ठीक है मान लेते हैं कि हाउसिंग की सहूलियतें वो कर लेंगे, होटल ज्यादा बना लेंगे, रोड ज्यादा बना लेंगे, लेकिन मुताफ जो है जहाँ पे लोग तवाफ करते हैं वो एरिया तो शायद अब नहीं बढ़ाया जा सकता। तो हाजियों की तादाद बढ़ाने से या उमरा करने वालों की तादाद बढ़ाने से ये मसला नहीं होता कि वहाँ पे प्रॉब्लम होता है फिर तवाफ करने में?
अभी तक तो कोई ऐसा मसला हुआ नहीं है, इसलिए कि उसको जो पहले मुताफ इन्होंने बढ़ाया है तो उससे अब ये हुआ कि 1 घंटे में कोई 1.5 लाख से ज्यादा या मुतबरीन जो है वो एक वक्त तवाफ कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात तवाफ करने के बाद रुकता नहीं, कोई वहाँ पे निकलता चला जाता है और बाकी तादाद जो है वो उसमें दाखिल होती जाती है और शामिल होती जाती है, तो इस तरह से वो जगह इसी तरह से चलता रहेगा मामला।
ठीक है,
ये सूरत हाल।
चलें शायद भाई, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और तफसील बताने के लिए। हमें अब शहला आदिल साहिबा ने ज्वाइन किया है जो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, उनसे मालूम करते हैं। शैला बीबी, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आप बताइएगा कि आप सरकारी स्कीम के तहत आप हज के लिए गई या प्राइवेट ग्रुप के साथ गई हैं?
जी, मैं गवर्नमेंट स्कीम के इसमें आई हूँ।
अच्छा, तो हमें बताएं कैसा तजुर्बा रहा आपका, क्या इस दफा इंतजाम अच्छे थे?
इंतजाम तो बिल्कुल भी किसी सूरत ही हमें पसंद नहीं आए। हम लोग वहाँ से पहुँचे मदीना, जब इस्लामाबाद से आगे कोई हमारा कोई पुराने हाल नहीं था, एक बस एक लगेज कैरियर आया, उसने हमारा लगेज ला के हमारे होटल में फेंक दिया, उसके बाद कोई बंदा कुछ कोई भी नहीं था, होटल के रूम पे बंदे लड़ाई कर रहे थे दूसरे से, जिसके हाथ में जिस कमरे की चाबी आ जाए वो उसमें जाके स्टे कर ले, कोई इंतजाम किसी किस्म का मिलता कोई, शाम को या रात को जाके कोई बंदा आया और उसने कहा कि बस जी आप लोगों ने बस सेटलमेंट कर लिया, बस हो गया काम सारा। ये तो था मदीना की कहानी। फूड वहाँ पे भी इंतहाई नाकस, बहुत बुरा हाल था फूड का, जो पका हुआ खाना था वो इंतहाई गंदे ऑयल में, बहुत बुरा खाना था, सबकी तबीयत खराब। हमें चने या मटर या इस तरह की चीजें दी जाती थी, जो चिकन और गोश्त देते थे उसमें काफी स्मेल होती थी, हम अपने मेस में जू ही एंटर होते थे, हमें काफी स्मेल हमारा जो है ना हमें फील हो जाता था कि वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग गुड हेयर। तो उसके बाद चलो मदीना का हम लोगों ने वो चुने और जब गुजर गया, जब हम मक्का आए तो हम लोगों ने कहा कि यार पिछला ही बेहतर था, लाइक यहाँ तो आप जब मेस में बेसमेंट की तरफ टर्न ही करते हैं तो यू हैव टू पुट अ क्लॉथ ऑन योर नोज, स्मेल आ रही होती है लिटरली। हमें गोश्त बहुत बुरा दिया जाता है, पिछले कितने दिनों से हमें मुसलसल सिर्फ दाल दी जा रही है और वो दाल भी पता नहीं, मुझे लगता है एक ही दफा पका के रखती है इन्होंने और वही हमें जो है ना खिलाई जा रहे हैं। मीना के हालात तो आप सोचे ही ना कि कितने बुरे थे।
तो
खाने को कोई
जी, हर ग्रुप के साथ कोई इसका लीडर होता है, तो आपका जो लीडर है क्या आप उसे शिकायत नहीं कर रही या आपकी बात सुनी नहीं जा रही?
पता नहीं है कि हमारा कौन सा ग्रुप है, हमारा हम 4 लोगों ने अप्लाई किया था
जी,
उसमें मेरे हस्बैंड ग्रुप लीडर थे, लेकिन उसके अलावा हमें कोई भी किसी किस्म का कोई ग्रुप अलॉट नहीं किया गया। बस हम यहाँ मक्का पहुंचे तो हमें पता चला कि ये हमारा रूम है, ये हमारे रूममेट्स हैं, हम कोई ग्रुप में डिवाइडेड नहीं थे, हम लोगों ने खुद अपना ग्रुप बनाया, हम लोगों ने खुद से अपना जो है ग्रुप लीडर एक बंदा बनाया, हम लोगों ने खुद से किया जो किया हमें। आप लिटरली आप सोच नहीं सकते कि हमें अभी तक, मुझे तो पता नहीं है कि हमारा मुअल्लम कौन है या हमारा हमें कौन है बंदा जो हमें यहाँ आके पूछेगा कि आपको कोई मसला तो नहीं, आप बताएं कितनी बार हाजियों ने एहतजाज भी किया खाने पे कि यार फूड इज ऑफ लोएस्ट क्वालिटी, सबसे गंदा खाना हमें देते हैं, स्मेली खाना है, बहुत बुरा है। हम इवन अगर कभी वंस इन अ ब्लू मून हमें मतलब राइस या इस तरह की कोई चीज देते हैं तो आप यकीन करें कि हम उसको अपने मुंह के अंदर नहीं डाल सकते। लोगों ने बाहर से नाश्ते करना शुरू कर दिए, वो बाहर से अपनी अपनी जेब से पे करके हम लोग खुद और हमारे साथ के भी सारे बाहर से खाना खाते हैं। हम लोगों ने खाना खाना ही छोड़ दिया यहाँ पे।
क्या ये ऐसा तो नहीं कि इत्तेफाक से आप और चंद लोग हैं उन्हें ये मसलों का सामना है? क्योंकि वजीर मजहबी अमूर और दूसरे लोग जो वो तो ये बता रहे हैं कि नहीं, इंतजाम बहुत अच्छे हैं और खाने की शिकायत चंद लोगों ने की है, बाकी सब लोग खुश हैं। तो ऐसा तो नहीं कि इत्तेफाक से आप कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये बुरा बदइंतजामी हो गई है या ज्यादा लोग हैं?
देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जो खाना है वो फूड जो है वो एक कंटेनर में हमारे सामने की सब बिल्डिंग में एक ही खाना सर्व हो रहा है। और मेन्यू में अगर आप लोगों ने मेन्यू का एक सामने हमारे एक बोर्ड सा लगा हुआ है उस पे अगर एक टाइम पे मटन गोश्त है तो वो मटन गोश्त हमें नहीं मिलता, हमें मटन आलू है
जी।
तो हमें मटन आलू की जगह मटर आलू मिल रहे होते हैं, शायद इनको पढ़ना नहीं आता होगा कि ये मटन है मटर नहीं।
अच्छा अच्छा, मीना और अरफात के बारे में बताएं, जाहिर है वहाँ पे वैसे इंतजाम तो नहीं हो सकते जैसे होटलों में होते हैं या बेहतर इंतजाम, तो खेमे में रहना पड़ता है, जमीन पे सोना पड़ता है जी।
बिल्कुल, वो तो हम लोग शायद अपनी खुशकिस्मती समझें कि हमारे ऐसे, लेकिन आप कैन यू इमेजिन वहाँ पे सफाई का कोई सिस्टम नहीं था, लाखों लोग होते हैं बस सब कोई। मेरे ख्याल तीसरे दिन जाके हमें स्वीपर्स वहाँ पे नजर आए, हमारे वॉशरूम्स का वो हाल था कि लोगों ने वॉशरूम तक जाना छोड़ दिया। और हम लोग देखें, हम लोगों को ये थर्सडे की रात को लेके गए, नेक्स्ट डे फ्राइडे था
जी।
फ्राइडे की जुम्मे की नमाज के लिए ना वॉशरूम में टॉयलेट में पानी था, ना वजू करने के लिए पानी था। फिर हमारे साथ कुछ लोगों ने शोर किया, उन्होंने इनको धमकाया, उन्होंने इसकी मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है उस पे अपलोड किया, फेसबुक पे हज मिनिस्ट्री 2019 पे उन्होंने अपलोड किया कि खुदा के वास्ते हमें पानी दो, हम लोगों ने नमाज पढ़नी है
जी।
तब जाके शाम को जब जुम्मे की नमाज खत्म हो गई थी तो शाम को जाकर पानी आया। और लास्ट डे फिर ये देखिए जो इंतजाम होटल्स में नहीं हो सकते वो हम मानते हैं कि वहाँ नहीं हो सकते, उसमें हमें कोई इशू भी नहीं है
जी।
हम लोग इकट्ठे रहे, बहुत मजा आया, सारे लोगों ने दूसरे के साथ काफी कोऑपरेट किया, लेकिन गंदगी हम कैसे बर्दाश्त करें कि वहां पे आप यकीन करें डस्टबिन के बाहर तक कूड़ा पड़ा होता था। और फूड तो वहां पे लिटरली हमें ऐसा किया गया जैसे दाता दरबार के बाहर फकीर भाग रहे होंगे, इतने बुरे हालात थे। उसके बाद जब लोगों ने शोर किया कि हम इतना खाने के पीछे नहीं जाएंगे
जी,
तो दिन का खाना शाम को 5:30 बजे और रात का खाना रात को 12:30 बजे, दो कार्टन आते थे, एक में रोटियां भरी होती थी, एक में दाल, एक लंच बॉक्स में बंद की हुई होती थी, और वो लाके वो लोग हमारे कमरे रूम के दरमियान में रख दिया करते थे और बोलते और कुछ भी नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं कहते थे। जिसने खाना होता था वो बेचारा उठ के खा लेता था, और जिसे नहीं खाना वो तो फिर जाहिर है वो जो भी अपने साथ स्नैक्स लाए हुए थे वो उस पर गुजारा कर रहे थे। तो फूड के इशू तो हमें बहुत ही ज्यादा रहे हैं वहां पे। और उसके साथ वहां पे भी हमें किसी बंदे का कोई अता पता नहीं था कि हाँ जी ये हमारे जानने ये हमारा मुअल्लम है, हम इसको कुछ कहेंगे तो हमारा कोई। और पानी में वो क्लोरीन व्हाटएवर एक्वा टैबलेट्स ये क्या चीज वो इतनी ज्यादा मिकदार में डाले थे कि हम पानी पी भी नहीं सकते थे। फिर हम सबीनों का इंतजार करते थे कि बाहर से सबीले आएंगी, लोग टूट पड़ते थे कि बाहर से पानी लाएं, ये तो पानी पीने का ही नहीं है।
अच्छा, और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम बेहतर था खाने पीने का? चले अगर ठीक नहीं था तो ट्रांसपोर्ट वगैरह का इंतजाम तो बेहतर था इस दफा।
अगर आप होटल से हरम तक के लिए पूछ रहे हैं तो वो भी देखें लाइक बसेस तो काफी कम है, लोग भेड़ बकरियों की तरह हांके रहे होते हैं उसके अंदर एक दूसरे के लिए, लिटरली लोग जो है ना लड़ाई कर रहे होते हैं कि यार मेरी फैमिली अंदर चली गई है मैं रह गया हूँ इस तरह। उसको भी हम कहते हैं चले गुजारा हो जाएगा, लेकिन इन्होंने अरफात से मुजदलफा के लिए रात को 10:30 के बाद बसेस चलाई थी। उससे पहले सारी तकरीबन 70% लोग तो पैदल ही चले गए थे, जिसमें बूढ़े भी थे, माजूर भी थे, हमारे साथ के थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ तो उससे नहीं है कि हम पैदल ही चले जाते हैं
जी। अच्छा, हज से पहले क्लासें भी ली जाती हैं, उस क्लासों में शायद सारे मसाइल और तकलीफें परेशानियां उनके लिए ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है, क्या आप लोगों को ऐसी कोई बात बताई गई थी कि जब आप जाएंगे तो हज पे आपको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ेगा?
देखिए ये तो कोई भी नहीं बताता कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको 4 दिन का बासी खाना मिलेगा, एक ही दफा मीना में दाल पका दी जाएगी और 5 दिन आपको वही खानी है और आपको सब्र करना है। सब्र की तलकीन तो हमें बहुत ज्यादा की गई थी और हम सब्र के लिए तैयार भी थे, लेकिन एक हद तक इतने लोग बीमार हैं मुझे तो हैरत होती है अगर मैं किसी से सुनती हूँ कि हमने टीवी पर सुना है कि जी हाजी बहुत खुश है, मेरे सामने कोई भी खुश नहीं है इंक्लूडिंग मी।
ठीक है, شیلا صاحب بہت شکریہ ہمیں تفصیلات بتانے کے لیے. یہ بھی ایک پہلو تھا جو نظر سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں کو شکایات ہیں ان کی شکایات رفع کرنی چاہیے اور گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. بہت شکریہ شیلا صاحبہ. ہمیں حافظ شہبان صاحب نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا ہے, ہمیں حجاز مقدس سے جوائن کیا ہے, ملتان سے تعلق ہے. حافظ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا, آپ کس گروپ کے ساتھ, پرائیویٹ گروپ کے ساتھ گئے ہیں یا سرکاری گروپ کے ساتھ, اور آپ کے انتظامات آپ نے کیسے دیکھے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گزارش یہ ہے کہ میری بہن نے جو باتیں کی یہ کافی حد تک درست تھی, لیکن ان لوگوں کے لیے جو کہ سرکاری حج پر گئے تھے. ہمارا الحمدللہ سلسلہ بہت اچھا رہا, ہم پرائیویٹ اسکیم کے تحت گئے تھے اور ہمارا منا میں بھی, مزدلفہ میں بھی, عرفات میں بھی, ہمیں ہر جگہ بہترین کھانا اور بوفے سسٹم ایک قسم کا تھا. تین تین چار چار کھانے ہمیں وہاں پرووائڈ کیے گئے, پھل فروٹ بھی اور کولڈ ڈرنکس اور منرل واٹر وغیرہ, یہ سارے باہر جو فریج لگے ہوئے تھے. آپ کی جو مرضی ہے, جب مرضی ہے, کھائیں پئیں, پیسہ ہمارا کوئی پرابلم نہیں تھا. اور ہاں, جو ان کی بات ہے, جو ہمارا مکتب نمبر 24 تھا, تو جو ٹوائلٹس وغیرہ اور وضو کی جو جگہ تھی وہ واقعی ٹھیک نہیں تھی. تو اس کا یہ ہوا کہ ہم ذرا وہاں سے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا تھا فائر بریگیڈ کا آفس ہے اور اس کی بیک کے اوپر جو ہے نا جی, وہ جو پرماننٹ واش روم تھے بہت بڑی تعداد میں. تو ہم نے پھر اپنا جو سسٹم تھا اس کو ہم نے خیر بات کہہ دیا, ہم وہاں جاتے تھے اور وہ ہمارے لیے بڑا بہترین تھا. خواتین کے لیے وہاں ماحول ٹھیک تھا اور مردوں کے لیے بھی ٹھیک تھا, نہانے کا بندوبست بھی تھا, کپڑے بدلنے کا, واش روم کا, وضو کا, ساری چیزیں وہاں موجود تھیں. اور بارش ہوئی یہاں پہ, منا میں بارش ہوئی, عرفات میں بارش ہوئی, اور لیکن الحمدللہ ہمارے خیموں میں پانی بھی نہیں آیا. بہرحال یہ ہے کہ انتظامی امور تھوڑے بہت تو خراب ہو جاتے ہیں ایسے. ایسے کھانے کے حوالے سے جو لوگ ہمارے جو گورنمنٹ کے تحت گئے ہوئے تھے ان سے کئی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی وہاں پہ. تو جیسے میری بہن نے کہا, یہ ان کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے, بلکہ شاید یہ پوری طریقے سے بتا نہیں سکی جو سب کچھ ہوا وہ اس سے بھی زیادہ برا ہوا.
اچھا,
لیکن جو پرائیویٹ جو اسکیم کے تحت جو گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ایسا کوئی ایسا سین نہیں تھا قطن بھی. میں نے خود کیا عرفات میں جگہ, تو وہاں سرکاری لوگ ہمارے بھی کچھ عزیز گئے ہوئے تھے, ان کو ملنے کے لیے میں گیا تو وہاں جو ہے وہ دال تھی اور وہ ان کے لیے پن کے پاس پلیٹیں نہیں تھیں, تو کپوں کے اندر دال جو ہے وہ سرو کی جا رہی تھی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہے. باقی اوور آل بڑا اچھا رہا. جہاں تک بسز کا بات وہ کر رہی ہیں, اس کے اندر یہ تھا کہ جو ان کی مینجمنٹ تھی اس کی کافی ساری غلطیاں تھیں. تو یہ تھا کہ جی بسیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں, ہمیں بھی انہوں نے مغرب کے ٹائم بٹھا دیا عرفات سے, جب ہم مغرب کی نماز پڑھ کے ہم بیٹھ کے بس میں, بس ہماری تیار تھی, آگے روڈ بلاک تھا اور وہ جناب پھر بس جا رہی ہے جہاں بھی وہ ٹرمینل سے اندر جانے لگتی وہاں رکھتا تو وہ شرطے کہتے جی آگے چلے جائیں. تو ہم 7 بجے کے بیٹھے ہوئے, 7:15 بجے کے بیٹھے ہوئے, 12:30 بجے رات کو مزدلفہ میں ایک جگہ ہمیں انہوں نے بلا کر کہا کہ یہاں آپ اتر جائیں.
اچھا,
تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم وہ منا سے کوئی آدھا کلو میٹر باہر مزدلفہ میں ہم اترے. تو ہم صبح فجر پڑھ کے پھر وہاں سے پیدل ہی روانہ ہو
گئے.
جی جی, تو وہ یعنی کہ 4 کلومیٹر کا فاصلہ تھا ہمارے منا والے کیمپ کا. تو ہم واک کرتے ہوئے صبح فجر پڑھ کے ہم 1 گھنٹے کے اندر وہاں چلے گئے تھے. تو اس کے بعد پھر ہم نے بس کے اوپر زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا, کیونکہ اس کے اندر یہ تھا کہ بس جو روڈ کے اوپر جا رہی ہے تو وہاں نہ وہ پھر اس میں سے اترنے دیتے ہیں اور وہ جو ہے بس جو ہے وہ شرکوں نے کہنا جی آگے لے جاؤ, یلا آگے چلے جاؤ آگے چلے جاؤ, اور بس جو ہے وہ شٹر پاک بنی ہوتی ہے, گھومتی رہتی ہے. اس کے اندر کوئی حاجیوں کا یا جو لوگ ان کو لے کے جائے تو ان کا قصور نہیں ہوتا. اس کے اندر صرف جو وہاں کی لوکل مینجمنٹ ہے اس کی ضرورتی ہے, اس کا قصور ہے.
اچھا حافظ صاحب, ہمارے ساتھ آپ اگر پلیز لائن پہ رہیں, ہمیں پروفیسر سجاد قمر صاحب نے جوائن کیا ہے جو پاکستان کے حج مشن کے رکن ہیں, افسر ہیں, ان سے ذرا ہم بات کرتے ہیں. پروفیسر صاحب بہت شکریہ, ہمیں بتائیں گے. کچھ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ حج کے انتظامات, زیادہ تر لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ حج کے انتظامات آپ نے بہت اچھے کیے ہیں, لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انہیں کھانا ٹھیک سے نہیں ملا یا ان کی ٹرانسپورٹ کے لیے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو آپ کچھ ہمیں بتائیں گے کہ کیا آپ لوگ یعنی اس کے لیے کر رہے ہیں, لوگ یہ مشکلات رفع کرنے کے لیے؟
بہت شکریہ مبشر صاحب, آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا. اصل میں
मिनिस्टर जो है नूरुल्लाह कादरी साहब, उन्होंने खुद बात करनी थी लेकिन रब्ता नहीं हो पा रहा था, इस वक्त यहाँ नमाज का वक्त भी होता है।
जी जी।
तो इसमें ये है कि इस दफा पाकिस्तान की तरफ से कुल 1,22,975 लोग जो है वो हज के लिए शामिल हुए
जी।
और यानी एक बहुत बड़ी तादाद है और गुज़श्ता सालों की निस्बत इस दफा जो है वो 20,000 की तादाद में इजाफा भी हुआ है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी वो शरीक था और जाहिर है कि हर बंदे की अपनी कब्र है और उसने उसका हिसाब देना है और मुझे किसी की कोई वकालत नहीं करनी, लेकिन जो मजमू तौर पर हज का इंतजाम था वो बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें कहीं कहीं शिकायत भी आई हैं और दो बड़ी और मेजर शिकायत आई हैं जो मीना में आई हैं। मीना में कुल जो है वो 47 मकातिब हासिल किए गए थे और उनमें से दो जो मकतब हैं उनमें बड़े पैमाने पर शिकायत सामने आई, खुसूसन खाने के हवाले से कि खाना जो है वो ताज़ा नहीं था और पैकिंग वाला खाना था। तो इस पर वजीर मजहबी उमूर ने फौरी तौर पर जो जनूब एशिया मुअस्सिसा के इंचार्ज हैं राफत बदर, उनके साथ बात की और उनका ये शिकायत पहुंचाई, क्योंकि आपको मालूम है कि मिना, अरफात और मुजदलफा में जो इंतजाम होता है वो सऊदी जो मुअल्लिमीन है और सऊदी हुकूमत उसके ज़ेर इंतजाम होता है।
अच्छा।
इसलिए इसमें आप खुद बराह रास्त कुछ नहीं कर सकते। तो जो राफत बदर हैं उन्होंने वक्त लिया और कहा कि मैं आपको मालूम करके बताता हूँ और उन्होंने कुछ देर में कहा कि बिल्कुल ये शिकायत ठीक है और हम इसका अजाला करते हैं। और उसके बाद ये है कि वहाँ जो लोग थे जिनको खाना नहीं मिला उन्होंने बजा तौर पर वहाँ शिकायत की, उसकी वीडियोस बनी और वायरल हो गई, लेकिन उसका नोटिस भी लिया गया और आइंदा के लिए वो जो मकादेब हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया कि आइंदा किसी भी तौर पर उनको काम नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा में भी एक बिल्डिंग की शिकायत मिली, उसका भी नोटिस लिया गया और आइंदा के लिए पाकिस्तान की तरफ से उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इसी तरह मक्का मुकरमा में एक आध बिल्डिंग में जब हाजी वापस आए हैं तो शदीद आंधी तूफान और बारिश की वजह से लाइट का मसला हुआ और उसको भी रफा किया गया। अलावा अजीम जो है यानी जो एक शिकायत सेल बनाया गया था और एक जो है टोल फ्री नंबर दिया गया था उस पे जो लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई हैं उनकी तादाद बहुत ही कम है, यानी 1,22,000 में से चंद सौ लोगों ने जो है वो शिकायत दर्ज कराई गई और उनको रफा किया गया। तो मजमू तौर पर अगर शिकायत का जायजा लिया जाए 1,22,000 में तो ये 0.1% से भी कम बनता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मजमू तौर पर आज के इंतजाम मक्का मुकरमा में और खुसूसन जो है मदीना मुनव्वरा में इस दफा जो रिहायशों का बंदोबस्त किया गया था वो 100% जो है वो मरकजिया में किया गया, यानी 100% जो हाजी थे पूरे के पूरे उनका सॉरी 100% नहीं बल्कि
10,000 बाहर
से ज्यादा 1,12,000 मरकजिया में किए गए और 10,000 जो है वो बाहर के। तो ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है मेरा ख्याल है जिसकी बजा तौर पर तहसीन की जानी चाहिए।
तो अब ये बताएं कि अगर कुछ लोगों को शिकायत हैं तो उसके लिए हर साल ये होना चाहिए कि जो मसाइल हो जाते हैं अगले साल उनको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, इंतजाम और बेहतर करने चाहिए। क्या ये वज़ीर या जो भी हुकूमत होती है उसके आने से मशरूत होता है या सरकारी इदारे मुसलसल ये कोशिश करते हैं कि हर साल पहले से बेहतर इंतज़ाम हो?
देखिए इस तरह है कि हर साल जो भी इंतजाम होते हैं उसकी बाकायदा तौर पर एक प्री हज अरेंजमेंट्स होते हैं, एक पोस्ट हज अरेंजमेंट्स, उनकी सारी एक रिपोर्ट मुरतब होती है और मक्का मुकरमा में एक डीजी हज होते हैं जो अभी इस वक्त डॉक्टर साजिद यूसफानी साहब हैं और वो एक सारी रिपोर्ट मुरतब करते हैं और उस रिपोर्ट को वो पाकिस्तान भेजते हैं। पाकिस्तान में न सिर्फ वजारत बल्कि पूरी काबीना उसको देखती है और यकीनन उसमें जो खामियां या कमियां रह जाती हैं उनका जायजा भी लिया जाता है और आइंदा के लिए उनको बेहतर करने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन इसमें अभी भी जो मसाइल सामने आए हैं उसमें ज्यादा मसाइल वहां पे सामने आए हैं जहां पे पाकिस्तान हज मिशन का अमल दखल नहीं था, यानी मीना में, और इसके निस्बत अगर मदीना मुनव्वरा रिहायशों का या मक्का मुकरमा में रिहायशों का मामला हो तो उसमें बहुत कम जो है वो शिकायत आई हैं।
लेकिन उनका एक रिपोर्ट बाकायदा फिगर के हिसाब से, यानी हर चीज की वो एक रिपोर्ट मरतब होती है, जितनी लोग शिकायत करते हैं वो भी बाकायदा यानी ऑन रिकॉर्ड होती हैं, उनको सामने रखा जाता है, उनका जायजा लिया जाता है और उसके मुताबिक आइंदा का लाए अमल बनाया जाता है। लेकिन फिर भी जहाँ पे लाखों लोग 20-25 लाख हज के लिए जमा होते हैं वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त मौजूद रहती है और अभी भी नहीं जो चीजें सामने आई हैं अगर उनको मद्देनजर रखा जाए, सबसे बड़ा मसला जो है वो खाने का है। यानी उजाज कराम खसूसन वो लोग होते हैं जो सारी जिंदगी पैसे अपने जमा करके थोड़े थोड़े से वो आज के लिए आते हैं, उनको बैरून मुल्क सफर करने की कोई इतनी आदत नहीं होती। जो लोग तो सफर करते हैं उनको पता है कि बाहर जाके खाना इस तरह का नहीं मिल सकता जिस तरह पाकिस्तान में मिलता है। तो ज्यादा जो शिकायत है वो खाने के बारे में होती है, तो उसके बारे में भी अगर पहले से लोगों को आगाही दी जाए कि बाज़ औक़ात जो पाकिस्तान वाली रोटी है वो नहीं मिल पाती, अगर कोई दूसरी मिलती है तो वो भी आप सब्र करके खा लें, यानी कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं, लेकिन अगर वो खा लें तो कोई हर्ज नहीं। तो मेरा ख्याल है इससे भी थोड़ा सा मसला जो है वो बेहतर हो सकता है। उसके साथ साथ यानी जो प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका भी यानी बाकायदा मॉनिटरिंग की गई और 402 जो प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के कैंप्स हैं या मक्का में उनकी बिल्डिंग या उनको बाकायदा विजिट किया गया मुख्तलिफ अमले की तरफ से, और उसमें भी जो शिकायत सामने आई उनको फौरी तौर पर यानी उनका अजाला करने की कोशिश की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि मजमूई तौर पर जो हज इंतजाम थे वो बेहतर थे, अच्छे थे पहले की नस्बत, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है और जो भी कोई कमी रही है उसको आइंदा बेहतर करने की कोशिश की जानी चाहिए।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सज्जाद कमर साहब हमें वक्त देने के लिए। पाकिस्तान के हज मिशन के अफसर थे, हमें इस बारे में तफसील से बता रहे थे। तस्लीम क्या कुछ थोड़ी बहुत खामी कमी रह जाती है लेकिन मजमूई तौर पर इंतजाम ठीक थे, वो सरकारी मौकफ बयान कर रहे थे। हमारे साथ शहबान साहब अभी मौजूद हैं, हाफिज शहबान साहब, बहुत शुक्रिया, आपको कुछ इंतजार करना पड़ा लेकिन बहुत अहम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोफेसर सज्जाद कमर। आप फरमाइए कि ये जो इन्होंने बातें की हैं क्या वो सब दुरुस्त हैं? आपने तो सब चीज़ें अपनी आंखों से खुद देखी होंगी, आप मुतमईन इनकी गुफ्तगू से?
जी सज्जाद साहब की बहुत सारी बातें इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो जैसे इन्होंने 3-4 मरतबा ये कहा कि ये इंतजाम मजीद बेहतर किए जा सकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है बेहतर हो सकते हैं। एक तो ये है कि थोड़ा सा तरबियत का फुकदान था और जैसे जो ग्रुप लीडर वगैरह इसका कोई कंसेप्ट यहाँ पे था ही नहीं इस दफा।
अच्छा।
जो कि हमेशा होता है। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो हमारी बहन कह रही थी वो टॉयलेट्स का जो मसला था और वजू खानों का, तो हमने फिर खुद ही उसको मैनेज किया कि जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ जाए, जो यंग है और जो यानी कि बुजुर्ग और खवातीन यूज करेंगे, जो नौजवान है वो सारे के सारे जो टॉयलेट दूर दूर बने हुए वहाँ चले गए, वॉशरूम जो वहाँ बने वहाँ चले गए। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा ना पानी की शॉर्टेज हुई, ना वहाँ कीचड़ हुआ, ना कुछ और हुआ, तो ये थोड़ी सी चीजें कुछ मैनेज करनी होती है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर बात यह है कि ये क्योंकि ये जो 5 दिन होते हैं हज होता तो यही है, मिना, मुज़दलिफा और अरफात जो है
7 से 12,
इसके अंदर भी जी तो अगर इसके अंदर भी अगर हम गुज़श्ता 70-72 साल से ये खाने वाला जो एक मसला है इसको हल नहीं कर सके तो फिर ये हमारी बहुत बड़ी ये नालायकी और नाकामी है ये इसके अंदर। तो ये इसके अंदर बात जैसा कि दोस्त है ये जो यहाँ के मुअल्लिम होते हैं इन्हीं के ये सारा इंतजाम इन्हीं के अंदर होता है और इन्हीं के साथ ये सारे लोग कॉन्टेक्ट करते हैं और ये सब कुछ इनको प्रोवाइड करते हैं, बच्चों भी खाना भी इवन हर चीज। तो उसके अंदर जो है बजाय कम्पिटिशन डालने के अगर कोई मुनासिब कीमत के ऊपर जो आदमी सही चीज दे रहा है उससे आदमी कॉन्टेक्ट कर ले।
ठीक।
या हमने यहाँ पे देखा कुछ लोग ऐसे भी थे उन्होंने जो खुद अपने तौर पे प्राइवेट वहां से उन्होंने कि भी वो एक दो जो मल्लिम जो लोग फिर रहे थे उनके वो उनके बकायदा उनके लोग वहां पे फिर रहे होते हैं।
ठीक है।
तो उनसे उन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि यार हम बम पचास लेंगे बने तो हमें आप खाना दें तो कितने पैसे देंगे? उन्होंने कहा यार हम ये देंगे ये देंगे ये देंगे तो आप ये हम 12 से लेंगे, तो उन्होंने उनके साथ तय कर लिया। तो बजाय इसके कि आप जो ये पूरे जो पैसे लेते हैं आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि भाई ये खाना वगैरह का अगर आप खुद बंदोबस्त करना चाहें तो इतने पैसे मना कर देंगे, आप खुद जाने आपका काम जाने।
मेरा ख्याल है कुछ प्राइवेट ग्रुप मेरा ख्याल है ये भी करते हैं कि खाने का बंदोबस्त, वो कहते हैं अगर आप खुद कर लें तो ज्यादा अच्छा है।
जी 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 जी, नहीं उसके अंदर वो सारा होता है जो मोहल्ले में है उसके थ्रू ही होता है, लेकिन वो पैसे जरा गुजारा चार्ज करते होंगे, मुझे नहीं पता इसका कि अंदर खाने क्या का सिलसिला होता है, लेकिन कुछ लोगों का बहुत अच्छा होता है, यानी कि आदमी हैरान रहता है कि वो लगता ही नहीं कि ये हम मुशक्कत वाली जगह पे आए हुए हैं, ये हम ये ना देख तो होता है ना कि आज ये मुशक्कत है
जी जी।
तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, हमें दर्श दिया जाता है पूरा क्योंकि सबर करना है और ये करना है वो करना है वगैरह वगैरह, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा वो ही कर रहे हैं और सब कुछ लोग आराम से लेते हुए हैं, अनुवाद के लिए हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, खाना उनको वहाँ मुयसर है, हर चीज उनको वहाँ पे मिल रही है, उनको कोई परेशानी नहीं है
जी।
तो ये थोड़ा सा अगर इसको हम जरा जो है इस तरीके से कर लें कि भी जो लोग जो है इस चीज से मुतमिन नहीं है वो अपने तौर पर खाने का बंदोबस्त कर लें।
ठीक है, मैं आपकी गुफ्तगू से ये बात जी जी आपकी गुफ्तगू से ये बात समझ में आई कि एक तो तरबियत थोड़ी सी ज़रा बेहतर करनी चाहिए, ये लोगों को समझाना चाहिए कि मुशक्कत के लिए यहाँ पर आएँ तो थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो सब्र कर लें, लेकिन इंतजाम भी ठीक होने चाहिए, थोड़ी सी जो बदइंतज़ामी हो जाती है वो थोड़ी सी बदइंतज़ामी काफ़ी बदएतमादी बन जाती है और उससे फिर मसाइल होते हैं। हमें हाजी रियाज साहब ने ज्वाइन किया है, फैसलाबाद से ताल्लुक़ है और इस साल उन्होंने हज किया है, वो भी मौजूद हैं हिजाज मुकदस में, उनसे बात करते हैं। रियाज साहब बहुत शुक्रिया, कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं इंतजाम ठीक नहीं थे, बेशतर लोग कह रहे हैं इंतजाम अच्छे थे, आप बताएं आपका क्या तजुर्बा रहा हज का?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम फैमिली के 8 अफराद हज के सादत के लिए इधर हाजिर हुए हुए हैं
जी।
तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि काफी जो है ना जी मामला जो है ये कब खाने का जो है ना ये अच्छा ही रहा है, बुरा नहीं है
जी।
लोग जो है ना देखें हम सफर पे हैं, हम इधर कोई शादी ब्याह में तो नहीं आए हुए
जी।
ये मतलब जो देखें इतना मेन्यू है इतना नहीं है, देखो फिर भी जो है ना हमें वो सुबह का नाश्ता उसमें हमें जो है ना वो चपाती है, सालन है, चाय है, ये हमें देते रहे हैं। दोपहर को हमें वो जो है ना एक आधा दिन पड़ता है जिसमें वो सब्जी देते हैं
जी।
वरना दोपहर को हमें वो मटन होता है, कभी चिकन होता है, कभी कीमा होता है, शाम को भी ऐसे ही है और उसमें वो हमें बाज़ दफ़ा राइस में वो डालते हैं, चिकन डालते हैं, बाज़ दफ़ा राइस में वो मटन भी डालते हैं।
आप सरकारी तो शुक्र है सरकारी स्कीम के तहत गए या सर प्राइवेट ग्रुप के साथ गए?
नहीं जी नहीं, हम तो सरकारी गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि 3 साल अप्लीकेशन देते रहे हैं, ये तीसरे साल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी ये अपनी बारगाह में कबूल किया है, हमें तो किसी किस्म की शिकायत नहीं है, बस एक शिकायत जरूर है
जी।
वो अगर आप इजाजत दें तो मैं वो कहना
जी,
चाहता
हूँ,
शिकायत सिर्फ थोड़ी सी वो ये है कि ये जब हम मीना से हमें लेके गए हैं ना ये अरफात
जी,
हमारा जो वो है ना कैंप 84 था, हाँ जी मकतब जिसको कहते हैं
जी,
तो बिल्डिंग जो हमारी है 223 है
जी,
उसमें जो ये मकतब है 84 इसमें गाड़ियां काम थी, उसमें हाजी हजरात जो है ना वो बड़े परेशान हुए, हम भी हुए।
अच्छा।
और बाकी ये रह गया ये खाने का मामला, ये तो जो है ना खाने के साथ वो दो दो किस्म का जो है ना जूस भी देते रहे।
अच्छा तो अच्छा ये बताएं
जो है
ये बताएं बसें कम थी तो फिर कैसे गए आप, फिर मीना से अरफात फिर कैसे गए बसें कम थी तो?
हाँ वो देखें हमें उन्होंने निकाला जो है ना वो सुबह की नमाज के टाइम से निकाला, वो कुछ को उन्होंने पहले से निकाला, तो वो हम जाके फिर वो जहाँ उन्होंने निकाला बहर भी इधर आए तो वहाँ फिर हम इंतजार करते रहे करते रहे करते रहे, 9 बजे फिर बस आई।
अच्छा
देखें ये मसला जो है ना सुबह के हम जो है 4:30 बजे के जाके फिर 9 बजे बस आए, तो फिर ये मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है वो भी, यहाँ बाकी ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं है जो डेली जाती हैं यहाँ से अजीजिया से जाती है ना खाना काबा, उसका मसला नहीं है
जी।
वो बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है, अगर कोई शिकायत करता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाशुक्री करता है। ये एक थोड़ी सी शिकायत है, इसमें आइंदा के लिए, आइंदा हाजियों के लिए जो है ना मीना से अरफात का जो मामला है ना जी, या अरफात से मुजलफा का जो मामला है, उसमें थोड़ी सी ट्रांसपोर्ट के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे दें। बाकी जो खाने का अगर कोई कहता है ना, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ खाने में कहीं कोई कमी नहीं
जी। वो इत्तेफाक से कुछ लोगों के साथ हो सकता है, जाहिर है आपको आपको पसंद का खाना मिल गया। आप ये बताएं रिहाइश से आप मुतमईन हैं? जो
नहीं, हम तो देखें एक एक कमरे में हम 50-60 लोग थे, अल्लाह की शुक्री नहीं करनी चाहिए, हम कोई शादी ब्याह के ऊपर नहीं आए हैं।
अच्छा
जी, हम तो गवर्नमेंट की स्कीम के ऊपर जहाँ भी उन्होंने ठहराया है, कहीं कहीं मतलब 60 लोग थे, कहीं 30 लोग थे, कहीं 20 लोग थे, कहीं जो है 80 लोग थे, ये हम जो है ना सारे मतलब अलग अलग अपने कैंप लगे हुए थे। बारिश भी हुई है, कोई मसला नहीं है, आराम से। हाँ एक दो दफा वो उनकी बिजली जरूर ट्रिप हुई है, वो भी बारिश की वजह से, चूंकि वो आंधी बड़ी आई थी, तो उसके बाद वो जो है ना वो एक दफा तो उन्होंने जल्दी ठीक कर दी, एक दफा 2 घंटे जरा लग गए थे। मेरा ख्याल है वो जो 2 घंटे लगे हैं उसमें लोगों ने शोर शराबा किया था वहाँ, हमारे कैंप वालों ने भी किया था। मैंने कहा भाई बैठ जाए ठीक हो जाती है, अपने मुल्क में भी तो जब जाती है
बहुत जाता है, बहुत जाती है। ठीक है, ठीक है रियाज साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ज़ाहिर है पूरी पिक्चर देखने के लिए हर तरह के लोगों से बात करना ज़रूरी है, तो अच्छा हुआ कि आपने भी अपने बारे में बताया। हमें इर्तज़ा हैदर साहब ने ज्वाइन किया, जो गालिबन ताल्लुक तो सरगोधा से रहते इस्लामाबाद में। इर्तज़ा साहब मैं सही बता रहा हूँ, आपका हज का तजुर्बा कैसा रहा, ज़रा फरमाइएगा।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मुबशिर भाई, हम लोग 3 फैमिली के लोग हैं, मेरे वालिद, वालदा और मैं
जी,
और हम सरकारी स्कीम के तहत यहाँ हज के लिए आए।
ठीक।
और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अनाउंस हुआ था रोड टू मक्का प्रोजेक्ट, उसमें नाम था।
अच्छा।
और पहली चीज तो ये कि हमारी इमिग्रेशन सारी की सारी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ही हो गई थी। जब हम मदीना एयरपोर्ट पे हमने लैंड किया तो हमें हार्डली टर्मिनल से होटल की बस तक आने में 10 मिनट लगे, और उस दौरान हमने अपना लगेज भी कलेक्ट नहीं किया, वो भी हमारे होटल में पहुंचाया गया।
बहुत अच्छी बात है।
और होटल जो था वो आप कह लें कि हार्डली 100 मीटर के फासले पे था मस्जिद नबी के मेन दरवाजे से
जी,
20 नंबर दरवाजे पे होटल था, रौज़ातुल फाखरा के नाम से, वो सूट से
जी।
अच्छा, जो खाने के हवाले से प्रॉब्लम आ रहा है उसमें कुछ चीजें जो मैंने अपनी बिल्डिंग में नोट की यहाँ मक्का आके और मदीना में भी
जी,
के खाने की टाइमिंग यहाँ पे दी जाती है 2.5 से 3 घंटे। अब उसमें कुछ लोग मुझसे में ऐसे होते हैं कि जो हरम में मौजूद होते हैं नमाज के लिए या बाकी मुनाजात के लिए, उनकी कोशिश होती है कि यार हम अपनी इबादत मुकम्मल करके फिर जाएंगे
जी,
और वो किसी को फोन कर देते हैं या वापिस आके खाना लेते हैं। तो क्योंकि खाना बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में आता है
जी,
और ये किसी को भी नहीं मालूम कि वो कितने डिस्टेंस से पक के आता है
जी,
तो ये थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है कि आपके किचन का अगर एसी नहीं चल रहा है या वो उन्होंने खुला छोड़ दिया तो वो खाना गोश्त ऑब्वियसली स्मेल दे जाता है।
ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे फ्रीज गोश्त है, यहाँ पे वो हमारी तरह ताजे गोश्त का रवाज नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर्स में गोश्त लगा होता है, होटलों में भी फ्रीजर्स में लगा होता है, वहीं से पक के आता है।
नहीं फिर लाखों लोगों के लिए बनाना ना खाना, तो सारा तो ताजा हो भी नहीं सकता
जी। बिल्कुल ऐसे ही है, आप देख लें 2 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं और उनके लिए खाना बनाना एक जैसा एक टाइम पे। फिर एक इशू जो मुझे पाकिस्तान में देखने में मिला कि जब हमारी क्लासेस अनाउंस हुई
जी,
तो हमारे साथ करीबन 350 लोगों की क्लास अनाउंस हुई थी
जी,
और उस क्लास में सिर्फ 150 से 250 लोगों ने शिरकत की थी
जी, जो आया नहीं तो उसे पता नहीं कौन सी बातों का
जी। हाँ कुछ थोड़ा सा बहसियत कौम हमें अपने आप को बदलना है कि हम हर जगह पे लविशनेस मांगते हैं
जी।
सफर को हदीसे रसूल खुदा में भी मुसीबतों का घर कहा गया, तो यहाँ पे लोगों को चाय की चीनी पे भी लड़ते देखा है
जी।
और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने 3-3 दिन खाना नहीं खाया और उसको उन्हें शुक्र करते भी देखा है
जी।
अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इंतजाम बहुत बेहतर थे। जहां मीना और मुजदलफा की बात है वहां रिहाइश में इस वजह से भी मसला हो सकता है कि हमने वकूफ़ मुजदलफा करना है, वकूफ़ मीना करना है, तो हम उन हदूद से बाहर नहीं जा सकते
जी।
अब सऊदी हुकूमत जितनी भी कोशिश कर ले, टेंट्स नए बना ले, खेमे नए लगा ले,
वो
हदूद से अगर बाहर लगाएगी तो आपका वकूफ मुकम्मल नहीं होगा। वो जगह का मसला नेचुरली है। बाकी कुछ चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी रही, ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत अच्छी रही, हम बिल्डिंग नंबर 118 में हैं
जी।
और मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई दिन ऐसा हो जिसमें हम हरम गए और हमें बस में खड़े होकर सफर करना पड़ा।
ठीक है, अच्छा इर्तजा साहब बहुत शुक्रिया, हमारा वक्त असल में खत्म हो रहा है, आपसे देर से रब्ता हुआ लेकिन आपने बहुत अच्छी पिक्चर पेश की, बहुत से इत्मीनान भी हुआ है, बहुत शुक्रिया, किसी और मौके पर आपसे मजीद बात करेंगे। हम हज के बारे में जाने की कोशिश कर रहे थे, हमने सरकारी मौका भी लिया और टूर ऑपरेटर से भी बात की और नए हाजियों से भी बात की। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुबशर अली ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, हमारे प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरिड गिल और स्टूडियो इंजीनियर थे पीट हंडले।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ अंजुम हैरल्ड गिल। लोगों को अच्छी गिजा और वर्जिश के अलावा अपनी फहरिस्त में एक सेहतमंद आदत को भी शामिल करने पर गौर करना चाहिए कि वो रात में घर की बत्तियां बुझा दें। ये तजवीज एक नई तहकीक में साइंसदानों ने पेश की है जिन्हें मस्नूई रोशनी के सेहत पर मनफी असरात मिले हैं। ताज़ा तरीन तहकीक में मुहक्किकीन ने खबरदार किया है कि मस्नूई रोशनियां हमें जिस्मानी तौर पर कमज़ोर कर सकती हैं और पट्ठों और हड्डियों की बीमारियों में मुबतला करने का बायस बन सकती हैं। जानवरों पर की जाने वाली तिब्बी तहकीक की अहम मुसन्निफ योहाना मायर थीं जो हॉलैंड की लीडेन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर से मुंसलिक हैं। वो अपने तहकीकी मरासले में लिखती हैं कि हमें ऐसा लगता था कि रोशनी और अंधेरे से कोई नुकसान नहीं होता या सेहत मुतासिर नहीं होती, लेकिन दुनिया भर की तजुर्बा गाहों से जमा किए जाने वाले मुतालियाती जायजे सब एक ही सम्त में इशारा कर रहे थे कि ये बात दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी तहकीक से पता चला है कि माहौलियाती रिधम या दिन और रात के कुदरती चक्कर हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, जबकि दिन और रात के कुदरती चक्कर की अदम मौजूदगी का नतीजा मुतादित सेहत के मसाइल की सूरत में सामने आता है। इन सेहत के मसाइल में मुदाफियाती निज़ाम की सोजिश, पट्ठों का नुकसान और हड्डियों की बीमारियों की इब्तदाई अलामात शामिल हैं। साइंसदानों के मुताबिक मुताले में जाहिर होने वाली जिस्मानी तब्दीलियां कमजोरी की तरफ इशारा कर रही थीं जो आम तौर पर ज्यादा उम्र वाले जानवरों और इंसानों में देखी जाती हैं, ताहम मुहक्किकीन को वहां एक हौसला अफजा बात भी नजर आई। मुहक्किक योहाना मायर ने कहा कि खुशखबरी ये है कि हम पर यह भी जाहिर हुआ कि सेहत पर होने वाली ये मनफी असरात वापस हो सकते हैं जब कुदरती दिन और रात के चक्कर को बहाल किया जाता है। दिन और रात के चक्कर से महरूमी और बीमारियों के दरमियान ताल्लुकात पर तहकीकात के लिए मुहक्किक मायर और इनके साथियों ने चूहों को मुसलसल 24 हफ्तों तक मस्नूई रोशनी की जद में रखा और इनकी सेहत का जायजा लिया। जानवरों के दिमाग की सरगर्मियों के मुताले के नतीजे से जाहिर हुआ कि मुसलसल रोशनी ने दिमाग के मरकजी सर्केडियन रिदम के आम पैटर्न को मुतासिर किया था, जबकि दिन और रात के कुदरती अमल में मुदाखलत और सर्केडियन रिदम के लिए रुकावट ने जानवरों में पट्ठों के नुकसान को जाहिर किया था। मुहक्किकीन ने जब चूहों को वापस 2 हफ्तों के लिए कुदरती माहौल में रखा तो सर्केडियन पीस मेकर में SCN न्यूरॉन्स तेजी से नॉर्मल रिदम में वापस आ गए और जानवरों की सेहत पर मुरतब होने वाले मनफी असरात खत्म होने लगे और फिर उनकी सेहत बेहतर हो गई। मुहक्किकीन के मुताबिक दुनिया की 75% आबादी रात में मस्नूई रोशनियों की जद में होती है, खास तौर पर मस्नूई रोशनियों की नुमाइश अस्पतालों और निगहदाश्त के यूनिट में ज्यादा आम है, जबकि रात की नौकरी करने वाले अफराद भी मुसलसल रोशनी में रहते हैं। मुहक्किकीन ने तजवीज़ किया कि मस्नूई रोशनी के मुसलसल इस्तेमाल के लिहाज से खास तौर पर मुअम्मर और कमजोर अफराद को एहतियात बरतने की जरूरत है। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔